Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ke tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर स्टूडियो में चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
वार्म वेलकम डॉक्टर शर्मा।
थैंक यू।
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख।
Indian indices end higher today with Nifty gaining 0.17%, crossing 24,800 mark. Sensex gains 147 points. US stocks close higher, Nasdaq adds 0.5%, S&P 500 jumps 0.4%, Dow Jones edges up 0.1%. And crude oil prices remain steady today. Brent crude is trading up at $76.45 per barrel.
घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। निफ्टी 0.17% उछलकर 24,800 के ऊपर पहुंचा। सेंसेक्स भी 147 अंक बढ़त लेकर हुआ बंद। अमरीकी शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली कल। नेस्टेक में 0.5% की वृद्धि हुई। S&P 500 0.4% ऊपर आया और डाउ जोन सूचकांक 0.1% लाभ में रहा। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $76.45 प्रति बैरल के ऊपर पहुंची। घरेलू शेयर बाजार में आज निवेशकों ने खरीदारी की और प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। अमरीकी बाजार में अगले महीने फेड द्वारा ब्याज दर की संभावनाओं के मद्देनजर आज सकारात्मक संकेत दुनिया भर के प्रमुख बाजारों में दिखे हैं, जिसका लाभ भारत में भी निवेशकों ने उठाया। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 147 अंक यानी 0.18% बढ़कर 81,053 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक यानी 0.17% की बढ़ोतरी के साथ 24,811 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों सूचकांक 0.5% लाभ के साथ बंद हुए।
Indian benchmark indices ended higher today with Nifty above 24,800 amid positive global cues following the Federal Reserve's policy meeting minutes, which indicated a strong likelihood of rate cut next month. At the closing bell, the BSE Sensex closed 147 points or 0.18% higher at 81,053. Nifty was up by 41 points or 0.17% to close at 24,811. The BSE mid-cap and small-cap indices rose 0.5% each. In the Sensex index, 17 out of 30 companies registered gains. The top gainers today were Bharti Airtel 1.5%, Tata Steel 1.4%, and ICICI Bank 1.3%. Conversely, the major laggards were Tata Motors 1.5%, Mahindra & Mahindra 1.3%, and NTPC 1.2%. In sectoral indices at the BSE, 15 out of 20 sectors logged gains. The top gainers today were telecommunications 1.60%, commodities 1%, and consumer durables 0.9%. The top laggards were utilities 1.01%, power 0.92%, and oil and gas 0.31%. The overall market breadth at the BSE was positive. Out of 4,053 companies, shares of 2,454 companies advanced, 1,509 declined, and 90 remained unchanged.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 83 रुपए 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में 101.22 पर समाचार तैयार किए जाने तक कारोबार कर रहा था। डॉक्टर शर्मा, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। कुल मिलाकर बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक, आज की तेजी के पीछे मुख्य क्या कारण सब रहे?
देखिए, एक तो मैं बताऊंगा कि जो स्टेबिलिटी है, खास करके जो अभी हम मार्केट्स में कुछ दिनों से स्टेबिलिटी देख रहे हैं, जो वॉलेटिलिटी का जो दौर हमने कुछ दिन पहले देखा, जो जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से, और भी बहुत सारे कारण। एक सबसे बड़ा था इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कि कब फेड अपना डिसीजन लेगा या फिर इन्फ्लेशन ट्राजेक्टरी कब नॉर्मल होगी। तो अभी कुछ दिनों में हमने देखा कि इन्फ्लेशन के ऊपर काफी जोरदार एक डेंट आया है। इन्फ्लेशन अपने जो है आरबीआई के बैंड में हमने देखा कि 3.5 पे इन्फ्लेशन आ गया है, जो कि विद इन द बैंड ऑफ आरबीआई है, जो आरबीआई का एक 4% का दिया है लिमिट और ऊपर से 4-6 का एक एक्सपेंडेड वो है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इन्फ्लेशन ट्राजेक्टरी इज नाउ बिकमिंग सॉफ्ट। और दूसरा, जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स, ग्लोबली फेड ने संकेत दिए हैं कि आने वाले टाइम में दे विल हैव सॉफ्टनिंग स्टांस के भी, वो भी कुछ सोचेंगे कि रेट कट की ओर बढ़ा जाए, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन ट्राजेक्टरी जो है वो भी काफी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। और तीसरा, मैं जो मनोज जी सबसे बड़ा कारण जो बताऊंगा कि मार्केट्स में एक रेजिलियंस जो बनी है अभी के कुछ वर्षों में, खास करके कोरोना के बाद जो एक रेजिलियंस बनी, उससे पहले जो दौर था जब हमने यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर देखी, उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल स्लोडाउन देखी काफी कंट्रीज में, तो मार्केट्स जो थी बिलो पोटेंशियल ऑपरेट कर रही थी, जिसमें मार्केट्स को एक गति जो होता है, एक जो डायरेक्शन होती है वो मार्केट्स के पास नहीं थी। मार्केट्स कई बार किसी न्यूज पे काफी अच्छा स्तर बनाती थी, उसके बाद वापस फिर थोड़ा लैकलस्टर अप्रोच में आ जाती थी। तो अब जो हमने सस्टेन्ड एक मोमेंटम देखा पिछले 3 वर्षों में, जो कि हरेक वर्ष एक नया जो स्तर मार्केट ने बनाया है, और खास करके जो पिछले साल में जब एक ऐसी रेजिलियंस बनी, जब हमारी जो ग्रोथ मोमेंटम है, जो जीडीपी नंबर्स हैं, वो हरेक साल अपने नए स्तर पे जाते रहे। अगर हम पिछले 3 साल का एवरेज देखें तो 8% से ऊपर हम ग्रो किए, और ये एक रेजिलियंस जो ग्रोथ में बनी, जो इकोनॉमी में बनी, उसने मार्केट को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। मार्केट अभी अपने पोटेंशियल की तरफ बढ़ रही है। मार्केट पहले अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रही थी, नाउ मार्केट्स आर मार्चिंग टूवर्ड्स इट्स एक्चुअल पोटेंशियल, जो इनका असल में होना चाहिए, वहां तक मार्केट अपना मोमेंटम गेन कर चुकी है। और एक इससे जो एक और कारण है कि रिटेल पार्टिसिपेशन, पहले जो मार्केट्स थी ज्यादातर वो एफआईआई ड्रिवन होती थी, मार्केट्स को एक जो सपोर्ट रहती थी या शॉक रहता था, वो कभी एफआईआई ने अपना पैसा डाल लिया, कभी निकाल लिया, तो प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन अभी जो मार्केट को एक मेजर सपोर्ट है वो डोमेस्टिक सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, खास करके जो हम देखते हैं कि ट्रांजेक्शन, जो मोर देन 40% ट्रांजेक्शन आर नाउ फ्रॉम द रिटेलर्स, तो एक बहुत बड़ी चीज है जिससे हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं और खास करके जो हमारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, नाउ दे आर रिलाइंग ऑन इंडियाज मार्केट, क्योंकि इंडिया ग्रोथ स्टोरी अब बहुत पॉपुलर हो चुकी है। अब लोगों को कोई संदेह नहीं है कि हम ग्रो कर रहे हैं, पता नहीं हम अगले साल उस लेवल पे ग्रो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हमारी पॉलिसी एनवायरमेंट कैसा होगा, हमारी जो पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी है वो कैसी होगी। नाउ द पीपल आर क्लियर अबाउट योर थॉट्स एंड क्लियर अबाउट द मार्केट्स एंड क्लियर अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री।
डॉक्टर शर्मा, यू मेंशन दैट द ग्रोथ स्टोरी इज इंटैक्ट एंड डीआईआईज हैव अ मेजर रोल टू प्ले इन दैट, बट व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग द एफआईआईज आर टारगेटिंग टू सेल द बैंकिंग स्टॉक्स, in fact to liquidate their holdings in India. Why is that? Is that because the growth rates has subtly slowed down, or the sense of stagnancy has come in, or do you think the bank stocks are overvalued?
I don't agree with these three reasons because FII investments are not that much stable investments. They churn their portfolios from one sector to another sector, another to the again.
So why are
other
they targeting
sector.
Banking?
But really, they must be booking their profits because banking has observed a great momentum during the last few months. So that's why they may be churning their stocks from the banking sector to the other sector. But our banking sector is very, very strong. Banking is our backbone, actually,
right,
which is driving the trajectory of Indian economy to the next and next and next level. So FIIs, they always make their investments, and speculative content is always there. So I don't see that there is any reason of growth trajectory or the stagnation or the some weakness in the banking sector. All these reasons are not valid at this juncture because all these three parameters are very, very strong to move forward. You will see a great rise in the banking stocks after some time because this is the only momentarily action by the such kind of segment.
यहां पर एक आपने बड़ी संभावनापूर्ण बात कही है डॉक्टर शर्मा कि मार्केट पोटेंशियल यानी भारतीय पूंजी बाजार अपने पोटेंशियल की ओर बढ़ता नजर आ रहा है. यहां पर अहम सवाल ये उठता है कि हमारी जो कंपनियां हैं वो वैश्विक बाजारों में क्या योगदान दे रही हैं जिसे समझा जाए कि हमारे बाजार अपने पोटेंशियल की ओर या अपने कह लें कि उन्नत स्तर की ओर अगला कदम उठा रहा है.
जो, पर जो हमारी जो कंपनीज हैं, हमारे जो बिजनेसेस हैं, खास करके मैं ये कहूंगा कि 2020 के बाद, कोरोना के बाद, उनका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल था बहुत इंक्रीज हुआ है क्योंकि उन्होंने देखा कि एक ऐसे दौर में जब स्लो डाउन थी, जब बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, जब वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम थी, जब ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, कंटेनर की प्रॉब्लम थी, तब भी उन्होंने उस लेवल पे सरवाइव करके अपने जो पोर्टफोलियोज थे, जो अपनी बैलेंस शीट्स थी, उनको मेंटेन रखा. तो नाउ दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि हमें ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटी है. हम उनको इतना रियलाइजेशन हो गया है कि वी आर ए ग्रेट ग्रोथ स्टोरी. हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, हमारे पास रेजिलियंस है. अब वो जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है, खास करके जिन प्रोडक्ट्स में हम पहले कुछ नहीं कर पाते थे ज्यादा, उनमें हम बहुत ज्यादा अग्रसर हो गए हैं. हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. जैसे कि फार्मास्यूटिकल में हमने देखा कि एक्सपोर्ट्स में हम बहुत पीछे होते थे, अभी हमारे फार्मास्यूटिकल टॉप फाइव में भी आ चुके हैं कि हम उसमें एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं. और दूसरा जो न्यू प्रोडक्ट्स, खास करके जो जैसे कि हम मैं बताऊंगा कि टॉयज में हमने काफी अच्छा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और फिर डिफेंस प्रोडक्ट्स में जो जिसके हम पहले बहुत ज्यादा इम्पोर्ट ही होता था, हम उसमें एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं. खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी जो एक तेज गति आई है, मोबाइल के हम एक मेजर एक्सपोर्टर बन गए हैं. तो ये सब चीजों ने एक बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है अपने जो भारत के जो उद्योगपति हैं, जो भारत के छोटे कारोबारी भी हैं, वो भी अब जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं उनके साथ जुड़ना चाहते हैं. नाउ दे वांट टू टेक द ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटी टू मूव फॉरवर्ड एंड टू कनेक्ट मोर एंड मोर विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स. ये एक बहुत बड़ी चेंज है जो पिछले 3 साल में ऑब्जर्व की गई.
डॉक्टर शर्मा, वी टॉकिंग अबाउट सेक्टर्स, लेट्स टेक योर ओपिनियन ऑन द ऑटो सेक्टर. It was always felt that this sector was doing very well. We were all talking about the SUVs craze that had taken over, the EV tailwinds and all that, but there are chinks in the armor now. Inventory seems to be piling up. There are murmurs of higher discounts. How should one weigh in on the auto sector right now?
I would say because these are the actually cycles of the sectoral cycle. Sometimes the sector grows significantly, but at some certain point of time, they have to restructure their business strategies. Sometimes the such kind of conditions like the piling up of the stocks comes after a few years. But I don't see that this is a long lasting problem of the sector. The sector will grow significantly after a few quarters. That is the momentarily cyclical, cyclical impact. So in the coming times, because the income levels are growing, rural market is growing, we have lot of reforms for the rural segment, our agriculture sector is growing more than 3% continuously since the last many years, barring the last year only because of the high base effect. But this year also, agriculture is expected to grow more than 5%. So this will create a great demand momentum, particularly in the rural segment, that will push the trajectory of automobile sales to the next level. Yeah.
Moving on, India's direct tax revenues have surged from rupees 5.5 lakh crore to rupees 20 lakh crore a year over the last 10 years. The tax to GDP ratio has increased to 6% from 5.6% over this period. Over 7 crore 28 lakhs ITR income tax returns for assessment year 2024-25 have been filed till July 31 this year. The Income Tax Department's focus on the use of technology is comparable with global practices to improve taxpayers' services, and that has resulted into processing of 4 crore 98 lakh ITRs out of 7 crore 28 lakhs ITRs till date, informed the Union Revenue Secretary. Compared to last fiscal 23-24, a growth of 17.7% was achieved in net collections and an increase of 7.5% in the number of ITRs filed over the previous year. Around 72% of returns were filed under the new tax regime, including 58 lakhs and 57,000 being the first-time filers, informed the chairman, Central Board of Direct Taxes. Now, Dr. Sharma, this seems to be real ease of doing business, because you have technology now bringing in trust and faith amongst people. There is confidence in the people that they will not be troubled by the tax authorities. Everything is going to be transparent, and that is the reason why a lot of new tax regime filers have come in, 72%.
Yes, that is true, that there are a lot of reforms in the taxation system during the last, 6-7 years, starting from the GST for the indirect taxes, and for the direct taxes, there are again a lot of reforms, and I would say three reasons are increasing the tax trajectory in the direct taxes. First is the widening tax base, because now the more and more people are feel easy to pay taxes, because the filing process has become
at par with the world.
And second is the rising income levels, because the income levels are now significantly rising. Our GDP is increasing, our personal income, or I would say the per capita income is also increasing. So all these parameters are supporting the trajectory of direct taxes, and that is also supported by the reforms in the indirect taxes, because right. Now the corporate are gaining more because of the ease of doing business, ease of doing trade. So all these parameters are supporting the income levels of the corporate also, which is again supporting the direct taxes scenario. So many factors are there to support the direct taxes trajectory and the overall taxation system in India, which is becoming now robust. And as you mentioned, that now our tax to GDP ratio is also increasing. But we have to go a long way. We have to reform more, particularly our direct taxes, because still the peak tax is imposed on the middle incomes of 15 lakh. This should be increased to the next level, so that the tax base is widening and more people are coming under the ambit of direct taxes and they are paying more, and our tax trajectory and tax base is increasing, and that will be the tax to GDP of our country in the coming times.
Dr. Sharma, jo sawal main puchna cha raha tha uska aadha jawab to lagbhag aapne de diya hai, phir bhi 1 अरब 40 करोड़ के आसपास हमारी आबादी और 7.75 करोड़ के आसपास हमारा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हुआ है, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? और आपने जिन सुधारों की बात की है वो किस प्रकार के सुधार होना चाहिए कि ये आधार भी बढ़े?
देखिए, अभी जो रिफॉर्म्स हैं, खास करके जो लो टैक्स बेस है, जहां पे लोअर टैक्सेशन की हम बात करते हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख की, तो वहां पे एक बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स हुई हैं। और जो हाई टैक्स ब्रैकेट्स हैं, वहां पे रिफॉर्म्स ज्यादा नहीं हुई हैं। उनके लिए सबसे पहले सुधार होने चाहिए, सो दैट द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों के पास आए, कंजम्पशन बढ़े, जिससे कि ज्यादा जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो देन फैक्ट्रीज विल बी एबल टू एक्सपेंड मोर, तो बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे लोग और ज्यादा टैक्स देंगे और टैक्स बेस और ज्यादा बढ़ेगा। और दूसरा अवेयरनेस प्रोग्राम्स, खास करके जब जो टायर टू और टायर थ्री सिटीज हैं वहां पे लोगों को कई बार नहीं मालूम होता है कि टैक्सेशन प्रणाली जो है वो किस तरीके से हम आगे उसको और रोबस्ट कर सकते हैं या हम उसका कैसे फायदा ले सकते हैं, कैसे हम टैक्स फाइल कर सकते हैं, कई बार वो इस चीज से थोड़ा हेजिटेट करते हैं। तो उनको और आदत डलेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना टैक्स पे करें जिससे कि टैक्स बेस वाइड होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है जो जिसमें एक और सुधार होना चाहिए कि जो बहुत ज्यादा स्लैब्स होती हैं कई बार ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं।
देयरफॉर द न्यू टैक्स रेजिम इज गुड,
न्यू टैक्स रेजिम ऑल्सो इज गुड बट स्टिल सम इश्यूज आर देयर बिकॉज ऑफ द स्टिल देयर आर सम स्लैब्स एंड दैट दोज हैव टू बी मोर एंड मोर रिफॉर्म्ड सो दैट the system becomes more robust and more easier to move forward।
आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां प्रमुख पांच एशियाई शेयर बाजारों में से तीन में लिवाली अधिक देखी गई, लाभ के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से हांगकांग का हैंग सेंग 1.42% ऊपर आ गया, जापान के निक्केई 225 में 0.68% की वृद्धि हुई, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.24% ऊपर आकर बंद हुआ। उधर बिकवाली के दबाव में चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.27% की कमी देखने को मिली। हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.01% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो सभी प्रमुख तीन शेयर बाजारों में लिवाली दिख रही थी। समाचार तैयार किए जाने तक फ्रांस का कैक 40 0.34%, जर्मनी का डेक्स 0.33% और लंदन का फुटसी 100 0.25% ऊपर कारोबार कर रहे थे।
The US stocks closed higher yesterday amid narrow trading ranges as investors digested a significant downward revision in payroll data and the release of minutes from the Federal Reserve's latest meeting, reinforcing expectations for a rate cut in September. Major US markets were trading in green. The Nasdaq composite added 0.5%. The S&P 500 was up by 0.4% and the Dow Jones Industrial Average gained 0.1%. Dr. Sharma, what is your expectation?
Yes, this is a great driver of the markets in the coming times, because now every eye is on the Fed rate cut in the coming times, and expectations are that RBI will also surprise the people with some cut in the repo rate in the coming times. So all these things will drive the markets to the next level and will create liquidity in the system, and markets will again will be in a gung-ho mode in the coming times with such expectations.
So
from
Dr.
Fed and from
do you think
RBI.
In the broader market, the investors should be cautious, opting for a selective approach before they get more clarity.
I think
on
the
Japan and US rates.
I think now the policy there is no uncertainty or any challenge from the policy front. Like, people are clear that rate cut will come in the coming times, but still the challenge is from the geopolitical developments, which are again and again deepening and may cause a great volatility if something happens deep in the geopolitical development. So people must be cautious about the geopolitics, but the policy clearances and policy scenario and policy direction is almost clear to everyone.
So you think the geopolitical situation as is prevailing, there are signs of perhaps a ceasefire agreement happening in the Middle East. So if that were to happen,
yes, that will
again
provide a great support to the markets.
Yeah,
and
but what are the other hindrances that you feel
I don't see
that can bring in headwinds to the Indian economy?
I don't see there is any another headwind for the Indian economy, because we are very, very robust in all the parameters. But still, the geopolitics may cause some concern if not settled at this juncture.
So what if the U.S. does not reduce the interest rate then?
But our major expectation is from Reserve Bank of India.
आइए आगे बढ़ें।
Moving on, the oil prices are steady on Thursday after falling for four straight days as investors worried about the global demand outlook. But a decline in U.S. fuel inventories provided a floor. The global oil benchmark Brent crude is trading 0.5% up at $76.45 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate is also trading up 0.4% to $72.22 per barrel when reports last came in. So what is happening in U.S. is a good thing when it comes to oil outlook. Then what about China? What happens if the demand from China is reduced? Do you think the prices will go up?
I don't see that crude prices will go up to the higher level. Prices will remain impacted because the global growth is not projected that much high. Global growth is less than 3%. So the crude prices will be lackluster or maybe volatile because of the geopolitical developments. But the long-term trajectory or the medium-term trajectory will be stable at this juncture. Yeah.
आइए चलें सर्राफा बाजार पर नजर डालें. समाचार तैयार किए जाने तक भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 25% यानी थोड़ी इसमें कमी देखने को मिल रही थी इसके 0.25% की और 71,840 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं चांदी 999 फाइन ये भी 0.23% कमी की जगह बढ़कर 85,500 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी. यहां पर डॉक्टर शर्मा सोने पर हमने लगातार आपके कयासों को देखा है कि वो खरे साबित हुए. आने वाले दिनों में क्या लग रहा है आपको कि
आने वाले दिनों में मनोज जी चमक बनी रहेगी क्योंकि आप डॉलर इंडेक्स देखें तो काफी नीचे आ गया है तो डॉलर वीक हो रहा है तो आने वाले टाइम में अगर फेड रेट कट हो जाता है तो दैट विल गिव अ ग्रेट सपोर्ट टू द गोल्ड प्राइसेस. वो एक न्यू हाईज बना सकते हैं तो चमक जो है
बरकरार रहने का. यहां पर दूसरा ये सवाल कि एक कह लें कि जो हमारे भारतीय खरीदार हैं वो तो सोना खरीदेंगे ही. शादी ब्याह का मौसम होगा या उपहार देना होगा तो सोना की खरीदारी होगी ही. लेकिन निवेश की दृष्टि से यानी मुनाफे की दृष्टि से लेना चाहें तो कौन सा टूल यानी कौन सा माध्यम उनको चुनना चाहिए जिससे उनका निवेश तुरंत निकल आ सके. गहनों में हम देखते हैं कि समस्याएं आती हैं
जी,
तो
जी,
किस
जी.
तरह वो
तो निवेश में उसमें मनोज जी जो ETF है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो गोल्ड एक्सचेंज को हम बोलते हैं वो एक बहुत अच्छी एक ऑप्शन है. इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो सॉवरन गोल्ड फंड जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तो उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है. उसमें आपको एडवांटेज है कि अगर गोल्ड प्राइसेस स्टैग्नेटेड भी रहते हैं तो आपको एक मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मिलता है.
सो व्हाट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड गोल्ड होल्ड
राइट नाउ?
या
आई थिंक गोल्ड मस्ट बी 40% एट दिस जंक्चर.
40%
यस.
शुरू से डॉक्टर शर्मा कहते रहे हैं कि सोने की चमक बढ़ेगी बढ़ेगी और इनके अनुमान सही साबित हुए तो निश्चित रूप से श्रोताओं कहीं न कहीं डॉक्टर साहब का अपना जो अनुमान है अपना निवेश है वह मुनाफा देता रहा होगा. बहरहाल
व्हाट्स योर आउटलुक वेरी ब्रीफली
बहुत संक्षेप में यानी सोने में निवेश और कर लिया जाए.
आउटलुक इज वेरी रोबस्ट एंड ऑप्टिमिस्टिक एंड देयर आर अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड इन द कमिंग टाइम्स.
यानी आने वाले दिनों में चमक बरकरार रहेगी सोने की बाजार में बुलंदी बनी रहेगी. इसी सद्भावना के साथ श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए.
शुक्रिया. थैंक यू.
थैंक यू फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर शर्मा.
थैंक यू.
एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन. Indian indices end higher today, with Nifty gaining 0.17%, crossing 24,800 mark. Sensex gains 147 points. US stocks close higher, Nasdaq adds 0.5%, S&P 500 jumps 0.4%, Dow Jones edges up 0.1%. And crude oil prices remain steady today. Brent crude is trading up at $76.45 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.